जॉन आरंभिक रचयिता यीशु थे, जिन्हें जॉन ने उस शब्द के रूप में संदर्भित किया जिसने सभी चीजों का निर्माण किया। जॉन द बैप्टिस्ट ने गवाही दी कि उसके बाद आने वाला यीशु उससे कहीं महान था। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को दूर कर देता है। मैंने आत्मा को यीशु पर उतरते देखा। यीशु ने अपना मंत्रालय शुरू किया। जॉन के कुछ शिष्यों ने यीशु को मसीहा मानते हुए उनका अनुसरण करने के लिए जॉन को छोड़ दिया। निकुदेमुस, जो शासक परिषद का सदस्य था, रात में यीशु के पास आया, शायद वह दिखना नहीं चाहता था, और कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप एक शिक्षक हैं जो ईश्वर की ओर से आए हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर उसके साथ न होता तो जो आश्चर्य कर्म तुम कर रहे हो वह कोई नहीं दिखा सकता। उत्तर में यीशु ने घोषणा की, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भी परमेश्वर का राज्य तब तक नहीं देख सकता जब तक वह दोबारा जन्म न ले। बूढ़ा होने पर कोई आदमी कैसे पैदा हो सकता है, निकुदेमुस ने पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक जल और आत्मा से न जन्मा हो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मांस मांस को जन्म देता है, परंतु आत्मा आत्मा को जन्म देता है। यह कैसे हो सकता है, निकुदेमुस ने पूछा। यीशु ने कहा, मैंने तुमसे प्रियवी की बातें कही हैं और तुम प्रतीति नहीं करते, फिर यदि मैं स्वर्गीय वस्तुओं की चर्चा करूं तो तुम क्यों कर प्रतीति करोगे। मनुष्य के पुत्र को छोड़कर कोई भी कभी स्वर्ग में नहीं गया। जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर उठाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। संकलक की टिप्पणी, भगवान के राज्य में किसी भी सांसारिक साधन, वंश, शक्ति, स्थिति या धन से प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आध्यात्मिक है, और यीशु को भगवान के रूप में स्वीकार करने और क्षमा और मेलमिलाप के उनके संदेश का पालन करने के माध्यम से आध्यात्मिक जन्म की आवश्यकता होती है। टिप्पणी समाप्त करें। यीशु ने यहूदिया को छोड़ दिया और सामरिया के सूखार नामक नगर से होते हुए फिर गलील की ओर प्रस्थान किया। याकूब का कुआं वहीं था। यीशु यात्रा से थका हुआ कुएं के पास बैठा था। यह लगभग छठे घंटे का समय था। सामरिया की एक स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पेय क्यों मांगता है। यहूदी सामरियों के साथ व्यवहार नहीं करते थे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का उपहार जानती और यह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे पूछती और वह देता है जीवित जल। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, आपके पास पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तुम्हें वह जीवन जल कहाँ से मिलता है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? उसने हमें कुआ दिया और आप भी और उसके पुत्र और पशु भी उसमें से पीते थे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई वह जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंतकाल तक प्यासा न होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मुझे यह पानी दीजिए ताकि मुझे प्यास न लगे और पानी भरने के लिए यहाँ न आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को बुलाओ और यहाँ आओ। स्त्री ने उसे उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तेरे पांच पति हो चुके हैं और जो अब तेरे पास है वह तेरा पति नहीं। आपने जो कहा वह सत्य है। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मैं समझती हूँ कि आप भविष्यवक्ता हैं। हमारे बाप दादा इसी पहाड़ पर भजन करते थे, परंतु तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम में है जहाँ लोगों को भजन करना चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझ पर विश्वास कर, वह समय आ रहा है कि तुम न तो इस पहाड़ पर और न यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे, परंतु सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह आ रहा है, वह जो मसीह कहलाता है, आकर हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझ से बातें करता हूँ वह मसीहा हूँ। वह स्त्री अपना जल का घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने जो कुछ मैंने किया वह सब मुझे बता दिया। क्या यह मसीह हो सकता है? वे नगर से बाहर गए और उसके पास आ रहे थे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री की गवाही के कारण उस पर विश्वास किया, उसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने कभी किया था। सो जब सामरी उसके पास आए तो उन्होंने उससे विनती की कि वह हमारे यहाँ रहे, और वह वहाँ दो दिन तक ठहरा, और बहुतों ने उसके वचन के कारण विश्वास किया। उन्होंने स्त्री से कहा, अब हम उस बात पर विश्वास नहीं करते जो तुमने कहा था, क्योंकि हमने स्वयं सुना है और हम जानते हैं कि यह वास्तव में दुनिया का उद्धार करता है। यीशु ने सामरिया छोड़ दिया और फिर से गलील चला गया, जहां उसने एक शाही अधिकारी के बेटे को ठीक किया। वह अधिकारी के बेटे की उपस्थिति में नहीं था, बल्कि केवल उसके उपचार के बारे में बोल रहा था। अधिकारी को विश्वास था कि उसका बेटा ठीक हो गया है और चला गया है। यीशु यरूशलेम गए, जहां उन्होंने भेड़द्वार के तालाब पर बैठे एक अपाहिज को ठीक किया। यहूदी यीशु पर अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि वह सप्त के दिन ये काम कर रहा था। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इससे वे और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि वह ईश्वर को अपना पिता भी कह रहा था, स्वयं को ईश्वर के बराबर बना रहा था। यीशु ने मानव को असंभव बना दिया था। यीशु ने उत्तर दिया, जैसा पिता करता है वैसा ही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और जो कुछ वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उसे इनसे भी बड़े काम दिखाएगा कि तुम चकित हो जाओ। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसे चाहता है जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है, कि जैसे सब पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो कोई पुत्र का आदर नहीं करता वह उस पिता का आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है। उस पर न्याय नहीं होता, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, वरन आ ही गया है, जब मरे हुए परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। क्योंकि जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी अपने आप में जीवन रखने की इजाज़त दी, और उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, अर्थात जिन्होंने जीवन के पुनरुत्थान के लिए भलाई की है और जिन्होंने न्याय के पुनरुत्थान के लिए बुराई की है। संकलक की टिप्पणी, आध्यात्मिक रूप से मृत लोग मसीह का संदेश सुनने में असमर्थ हैं। वे अपने नेताओं द्वारा कई वर्षों से लागू की गई अपनी परंपराओं से अलग कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। टिप्पणी समाप्त करें। परंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई दूसरा अपने नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। तुम किस प्रकार विश्वास कर सकते हो जब तुम एक दूसरे से महिमा पाते हो और उस महिमा की खोज नहीं करते जो एकमात्र परमेश्वर से आती है? यह न सोचो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला एक है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने आशा रखी है। यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा। लेकिन यदि आप उनके लेखन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप मेरी बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? संकलक की टिप्पणी: तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए खड़ा करेगा। तुम्हें उसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। व्यवस्था विवरण 18:15-16 से टिप्पणी समाप्त करें। यीशु झील के दूसरी ओर चला गया था। भीड़ उसे ढूंढने के लिए वहां गई। यीशु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने तृप्त रोटियां खाईं। उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो नष्ट हो जाता है, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, मसीह के वचन, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि उस पर परमेश्वर पिता ने अपनी मुहर लगा दी है। तब उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देखकर तेरी प्रतीति करें? तू क्या काम करता है? जैसा लिखा है कि हमारे पुरखाओं ने जंगल में मन्ना खाया, खाओ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्ग और जगत को जीवन देता है। उन्होंने उससे कहा, महोदय, यह रोटी हमें सदैव दिया करो। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, वह अनंत जीवन का भोजन है। जो कोई मेरे पास आएगा वह भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक प्यासा न होगा। तो भी विश्वास नहीं करता, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, वरन अंतिम दिन उसे फिर से उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र पर दृष्टि करे, मेरा विश्वास है कि उसे अनंत जीवन मिलना चाहिए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। संकलक की टिप्पणी: विश्वास के लिए जागरूकता से अधिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यदि आप सचमुच मानते हैं कि आप शारीरिक रूप से मरने वाले हैं, तो आप अपनी मृत्यु को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। आध्यात्मिक रूप से भी यही सत्य है। यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं कि यीशु ईश्वर हैं और जो अनंत जीवन देते हैं, तो आप उनके साथ अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे, करेंगे। टिप्पणी समाप्त करें। यहूदी उसके विषय में कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा, वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके पिता और माता को हम जानते हैं? अब वह कैसे कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में कुड़कुड़ाओ मत। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता, जिसने मुझे भेजा है यीशु के संदेश के द्वारा, उसे खींच न ले। मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं में लिखा है, और वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए जाएंगे। जो कोई पिता से सुनता और सीखता है वह मेरे पास आता है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है उसे छोड़ किसी ने पिता को नहीं देखा, उसने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। मैं जीवन की रोटी हूँ। तुम्हारे पुरखाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वे मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है कि कोई उसे खाए और न मरे। मैं वह जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वह सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा शरीर है। यूहन्ना 6:41-51। संकलक की टिप्पणी, जीवित रोटी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, क्योंकि वह अनंत जीवन है। उनके संदेश का जब दिल से पालन किया जाता है, कर्तव्य या किसी अनुष्ठान के कारण नहीं, तो पापों की क्षमा और शाश्वत जीवन मिलता है। टिप्पणी समाप्त करें। तब यहूदी आपस में तीखी बहस करने लगे। यह आदमी हमें अपना मांस खाने के लिए कैसे दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा खून पीता है, अपने अस्तित्व को अनंत भगवान के रूप में खाता है जो मानव रूप में है, और वह बलिदान बन जाएगा जो पाप का प्रायश्चित करता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन में पुनर्जीवित करूंगा। क्योंकि मेरा मांस असली भोजन है और मेरा खून असली पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खिलाएगा वह भी मेरे कारण जीवित रहेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तुम्हारे पुरखाओं ने मन्ना खाया और मर गए, परंतु जो यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। उन्होंने यह बात कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते समय कही। यह सुनकर उनके कई शिष्यों ने कहा, यह एक कठिन शिक्षा है, इसे कौन स्वीकार कर सकता है? संकलक की टिप्पणी, भगवान उनकी जीवन शैली में बदलाव के बाद उन्हें मसीह के शरीर उनके चर्च में डालते हैं, और बपतिस्मा जो कि विसर्जन द्वारा दफनाया जाता है। टिप्पणी समाप्त करें। यह जानते हुए कि उसके चेले इस विषय में कुड़कुड़ा रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या इससे तुम्हें ठेस पहुंचती है? क्या होगा यदि आप मनुष्य के पुत्र को वहां चढ़ते हुए देखें जहां वह पहले था, वापस पिता के पास? आत्मा जीवन देता है, मांस का कोई महत्व नहीं है। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, वे आत्मा हैं और वे जीवन हैं। फिर भी तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से जानता था कि उनमें से कौन विश्वास नहीं करेगा और कौन उसे पकड़वाएगा। उसने आगे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक पिता उसे सक्षम न करे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इस समय से उसके कई शिष्य पीछे हट गए और उसके पीछे नहीं गए। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। यीशु गए परंतु गुप्त रूप से। भीड़ उसे ढूंढ रही थी और फुसफुसा रही थी, वह एक अच्छा आदमी है। दूसरों ने उत्तर दिया, नहीं, वह लोगों को धोखा देता है। परंतु यहूदियों के डर से कोई भी उसके विषय में कुछ भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहता था। पर्व के आधे समय के बाद यीशु मंदिर में गया और उपदेश देने लगा। यहूदियों ने चकित होकर पूछा, इस मनुष्य को बिना पढ़े ऐसी विद्या कैसे मिल गई? यीशु ने उत्तर दिया, मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं है, यह उसी से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चुनता है, तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी शिक्षा परमेश्वर की ओर से आती है या मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं करता। तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भीड़ ने उत्तर दिया, आप में भूत प्रेत है। यरूशलेम के कुछ निवासी पूछने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसे वे मार डालना चाहते हैं? यहाँ वह सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और वे उनसे एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। क्या अधिकारियों ने सचमुच यह निष्कर्ष निकाला है कि वह मसीह है? यीशु ने कहा, मैं केवल थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ हूँ और फिर उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यह आदमी कहाँ जाने का इरादा रखता है कि हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं? संकलक की टिप्पणी, यीशु ने कितनी बार उन्हें बताया था कि वह पिता की ओर से है, जैसा कि उसके चमत्कारों से पता चलता है। उनकी परंपराएं कि मसीह सांसारिक होंगे, विश्वास करने की उनकी इच्छा को रोकते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। मेरे पास आओ, मैं ही मार्ग हूं। पर्व के आखिरी और सबसे बड़े दिन यीशु खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके भीतर से जीवन के जल की धाराएं बह निकलेंगी। इससे उसका तात्पर्य आत्मा से था, जिसे उस पर विश्वास करने वालों को बाद में प्राप्त होना था। उस समय तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु की अभी तक महिमा नहीं हुई थी। मैं संसार की ज्योति, भगवान का मुक्ति का संदेश हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह कभी अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं जा रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मर जाओगे। जहां मैं जाता हूं, वहां तुम नहीं आ सकते। आप नीचे से हैं, मैं ऊपर से हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं हूं, वही हूं जिसका मैं दावा करता हूं, तो तुम सचमुच अपने पापों में मर जाओगे। संकलक की टिप्पणी, यदि कोई अपने विश्वास पर कार्य नहीं करता है कि यीशु ईश्वर है, तो उसे पापों से क्षमा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी समाप्त करें। उन्हें समझ नहीं आया कि वह उन्हें अपने पिता के बारे में बता रहा था। तो यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाओगे, जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वही हूं जो मैं होने का दावा करता हूं, और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, केवल वही बोलता हूं पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा है, वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जो उसे भाता है। यदि तुम मेरी शिक्षा को मानते हो, तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तब तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। संकलक की टिप्पणी, यदि आप उनकी शिक्षाओं को दृढ़ता से नहीं पकड़ते हैं, तो आप उनके शिष्य बनना बंद कर देंगे, क्योंकि आप एक प्रतिबद्ध अनुयायी नहीं हैं। टिप्पणी समाप्त करें। जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। अब दास का परिवार में कोई स्थायी स्थान नहीं होता, परंतु पुत्र सदैव के लिए उसका हो जाता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहीम के वंशज हो, तो भी तुम मुझे मार डालने को तैयार हो, क्योंकि मेरे वचन के लिए तुम्हारे मन में कुछ भी स्थान नहीं। मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैंने पिता के सामने देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और अब यहां हूं। मैं अपने आप नहीं आया हूं, लेकिन उसने मुझे भेजा। मेरी भाषा आपको स्पष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जो कहता हूं उसे तुम सुन नहीं पाते। तुम अपने पिता शैतान के हो, और तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह शुरू से ही हत्यारा था, और सच्चाई पर कायम नहीं था, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जब वह झूठ बोलता है, तो अपनी मूल भाषा बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो भी मैं सच कहता हूं, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या आप में से कोई मुझे पाप का दोषी साबित कर सकता है? अगर मैं सच कह रहा हूं, तो आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है, वह सुनता है कि परमेश्वर क्या कहता है। तुम जो नहीं सुनते, उसका कारण यह है कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। जब यीशु वहां से गुजर रहा था, तो उसने एक आदमी को जन्म से अंधा देखा। उसने जमीन पर थूका और लार से मिट्टी बनाई। उस मिट्टी से उस आदमी की आंखों का अभिषेक किया और उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में धो लो। वह जाकर नहाया और देखकर आ गया। पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भिखारी के रूप में देखा था, वे कह रहे थे, क्या यह वही आदमी नहीं है जो बैठकर भीख मांगता था? कुछ लोगों ने दावा किया कि वह था। दूसरों ने कहा, नहीं, वह केवल उसके जैसा दिखता है। लेकिन उन्होंने खुद ही जोर देकर कहा, मैं ही आदमी हूँ। इसलिए वे उस मनुष्य को जो अंधा था फरीसियों के पास ले आए। वह सप्त का दिन था जब यीशु ने अंधे व्यक्ति को ठीक किया। इसलिए फरीसियों ने उससे यह भी पूछा कि उसे दृष्टि कैसे प्राप्त हुई। उस आदमी ने उत्तर दिया, यीशु ने मेरी आंखों पर मिट्टी डाल दी और मैंने धोया और अब मैं देखता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह विश्राम दिन का पालन नहीं करता। परंतु दूसरों ने कहा, जो मनुष्य पापी है वह ऐसे चिन्ह कैसे कर सकता है? परंतु दूसरों ने पूछा, एक पापी ऐसे चमत्कारी चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अंत में वे फिर से अंधे आदमी की ओर मुड़े, तुम्हें उसके बारे में क्या कहना है? उसने तुम्हारी आंखें खोली, उस आदमी ने उत्तर दिया, वह एक भविष्यवक्ता है। जब तक उन्होंने उस व्यक्ति के माता पिता को नहीं बुलाया, तब तक यहूदियों को विश्वास नहीं हुआ कि वह अंधा था और उसे दृष्टि प्राप्त हुई है। क्या यह आपका बेटा है? उन्होंने पूछा। क्या यह वही है जिसके बारे में आप कहते हैं कि वह अंधा पैदा हुआ था? ऐसा कैसे है कि अब वह देख सकता है? हम जानते हैं कि वह हमारा बेटा है, माता पिता ने उत्तर दिया, और हम जानते हैं कि वह अंधा पैदा हुआ था। दूसरी बार उन्होंने उस मनुष्य को यह कहते हुए बुलाया, परमेश्वर की महिमा करो, हम जानते हैं कि यह आदमी पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। एक बात मैं जानता हूँ कि यद्यपि मैं अंधा था, अब देखता हूँ, उस आदमी ने उत्तर दिया, क्यों? यह तो अद्भुत बात है। तुम नहीं जानते कि वह कहाँ से आता है, फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का उपासक है और उसकी इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। उन्होंने उसे उत्तर दिया, तू घोर पाप में पैदा हुआ है और क्या तू हमें सिखाएगा? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। संकलक की टिप्पणी, वे जानते थे कि वह आदमी अंधा था और कह रहा था कि क्या यह वह आदमी नहीं है जो बैठकर भीख मांगता था। फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर ईश्वर के रूप में यीशु की शक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ओह परंपरा की शक्ति। टिप्पणी समाप्त करें। यीशु ने कहा, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु दूसरे मार्ग से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उनका चरवाहा उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यूहन्ना 10:1-5। मैं द्वार और अच्छा चरवाहा हूँ, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देगा। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वह बच जाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा ढूंढेगा। मैं अपने को जानता हूँ और मेरे अपने मुझे जानते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरे पास अन्य भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, अन्य भेड़े अनुयायी हैं जो यहूदी नहीं हैं। मुझे उन्हें भी लाना होगा और वे मेरी आवाज सुनेंगे, तो एक झुंड एक चरवाहा होगा। इसी कारण पिता मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ग्रहण करूँ। इसे कोई मुझसे नहीं लेता, बल्कि मैं इसे अपनी इच्छा से देता हूँ। मुझे इसे छोड़ने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आरोप मुझे अपने पिता से मिला है। सर्दी का मौसम था, यीशु मंदिर में टहल रहे थे। यहूदी उसके पास इकट्ठे हो गए और उससे कहने लगे, तू हमें कब तक भ्रम में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें स्पष्ट बता दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा और तुम प्रतीति नहीं करते। मेरे पिता के नाम पर मैं जो काम करता हूँ, जनता के लिए चमत्कार स्पष्ट है कि वह ईश्वर की ओर से था, लेकिन उनके नेताओं के लिए अस्वीकार्य है। मेरे बारे में गवाही देते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करते क्योंकि आप मेरे झुंड का हिस्सा नहीं हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता, जिसने उन्हें मुझे दिया है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। मृतकों के लिए लाजर को जीवित करना। यीशु को बताया गया कि बैतनियाह का लाजर बीमार है। यीशु ने कहा कि इस बीमारी से मृत्यु नहीं होती। यह परमेश्वर की महिमा के लिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। शिष्यों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो ठीक हो जाएगा। अब यीशु ने अपनी मृत्यु की बात कही थी, परंतु उन्होंने सोचा कि उसका अभिप्राय नींद में विश्राम करना है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और तुम्हारे लिए मैं आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। लेकिन आइए हम उसके पास चलें। जब यीशु आए तो उन्होंने पाया कि लाजर 4 दिन से कब्र में है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। लेकिन अब भी मैं जानता हूँ कि तुम भगवान से जो भी मांगोगे, भगवान तुम्हें देंगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मुझे पता है कि वह आखिरी दिन पुनरुत्थान में फिर से उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंतकाल तक न मरेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मेरा मानना है कि आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र जो दुनिया में आ रहे हैं। यीशु फिर से बहुत प्रभावित हुआ, कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और उसके सामने एक पत्थर पड़ा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हे प्रभु, इस समय तक दुर्गंध आ जाएगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदैव मेरी सुनता है, परंतु जो लोग आसपास खड़े हैं उनके कारण मैंने यह कहा कि वे विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। जब उसने ये बातें कहीं तो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे लाजर, निकल आ। जो आदमी मर गया था वह बाहर आया। उसके हाथ और पैर कपड़े की पट्टियों से बंधे थे और उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलो और जाने दो। इसलिए बहुत से यहूदियों ने, जो मरियम के साथ आए थे और जो कुछ उसने किया था देखा था, उस पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए और उन्हें बताया कि यीशु ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा इकट्ठी करके कहा, हम क्या करें? इसके लिए इंसान कई तरह के संकेत करता है। यदि हम उसे ऐसे ही जाने देंगे तो सब लोग उस पर विश्वास करेंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों छीन लेंगे। कैफा ने, जो उस वर्ष महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते, और न तुम यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि प्रजा के लिए एक मनुष्य मरे, यह नहीं कि सारी जाति नाश हो जाए। उस दिन से उन्होंने उसे मार डालने की योजना बना ली। प्रायश्चित बलिदान का समय निकट है। यहूदियों का फसह निकट था, और बहुत से लोग फसह से पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए देश से यरूशलेम को गए। वे यीशु को ढूंढ रहे थे और मंदिर में खड़े होकर एक दूसरे से कह रहे थे, तुम क्या सोचते हो कि वह पर्व में कभी नहीं आएगा? अब महायाजकों और फरीसियों ने आज्ञा दी थी कि यदि कोई जाने कि वह कहाँ है तो उन्हें बता दे कि वे उसे पकड़ लें। फसह के 6 दिन पहले यीशु बैतनिया आए, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मृतकों में से उठाया था। मरियम ने यीशु के पैरों का अभिषेक किया और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा। उसके शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, वह जो उसे धोखा देने वाला था, कहा, यह मरहम 300 दीनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? उसने यह कहा, इसलिए नहीं कि उसे गरीबों की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वह एक चोर था, और पैसों की थैली का प्रभारी होने के कारण वह उसमें जो कुछ भी डालता था, उसमें अपनी मदद करता था। यीशु ने कहा, उसे अकेला छोड़ दे, कि वह उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रख छोड़े। गरीब हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ नहीं हूं। इसलिए प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास करने लगे। संकलक की टिप्पणी, मूसा के कानून के अनुसार हत्या वर्जित थी, जिसे वे अनदेखा करना चाहते थे। उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा, धन और सम्मान उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं से अधिक महत्वपूर्ण थे। टिप्पणी समाप्त करें। पर्व में आई एक बड़ी भीड़ ने सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए वे तार के पेड़ों की शाखाएं लेकर उससे मिलने के लिए निकले और चिल्लाते हुए कहा, होसन्ना, अर्थात हमें बचा लो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, यहां तक कि इसराइल का राजा भी। और यीशु को एक गधा का बच्चा मिला और उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आ रहा है। जकर्याह 9:09 से। मनुष्य के पुत्र की महिमा किए जाने का समय आ गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का एक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो कोई इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह उसे अनंत जीवन के लिए रख छोड़ता है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो वह मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। अब इस संसार का न्याय है, अब इस संसार का शासक शैतान निकाला जाएगा। जब मैं पृथ्वी पर से ऊपर उठाया जाऊंगा, सूली पर चढ़ाया जा रहा हूं, तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। ज्योति यीशु थोड़ी देर और तुम्हारे बीच है। जब तक प्रकाश मिले तब तक चलो, कहीं ऐसा न हो कि अंधियारा तुम पर छा जाए। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है तब तक ज्योति पर विश्वास रखो कि तुम ज्योति के पुत्र बन जाओ। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे छिप गया। अधिकारियों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के भय के कारण इसे नहीं मानते थे, ताकि आराधनालय से बाहर न निकाले जाएं, क्योंकि उन्होंने उस महिमा को जो मनुष्य से आती है परमेश्वर से आने वाली महिमा से अधिक प्रिय जानी। यीशु ने चिल्लाकर कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, परंतु उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर जगत में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत का न्याय करने नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया हूं। जो मुझे अस्वीकार करता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता वही दोषी है, जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन में उसका न्याय करेगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने आप ही मुझे आज्ञा दी है कि क्या बोलूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कहता हूं वैसा ही कहता हूं जैसा पिता ने मुझसे कहा है। संकलक की टिप्पणी, यीशु का संदेश था और है कि व्यक्ति को उसके सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। आज्ञाकारिता द्वारा उस पर भरोसा करना अनंत जीवन देता है। इस प्रकार किसी के कार्य या तो उसके वचन को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं जो न्याय करता है। यदि कोई उसे अस्वीकार करता है तो वह अनंत जीवन को अस्वीकार करता है। टिप्पणी समाप्त करें। यीशु जानता था कि उसका समय आ गया है। वह शिष्यों के पैर धोने लगा और उन्हें अपने चारों ओर लपेटे हुए तौलिए से पोंछने लगा। जब उसने उनके पाँव धोए और अपना वस्त्र पहनाया और अपने स्थान पर चला, तब उसने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? आप मुझे शिक्षक और भगवान कहते हैं, और आप सही हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। यदि मैंने, तेरे प्रभु और गुरु ने, तेरे पाँव धोए हैं, तो तुझे भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, न ही संदेशवाहक अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। यदि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं आप सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने किसे चुना है। परंतु पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होगा कि जिसने मेरी रोटी खाई उसने मेरे विरुद्ध एड़ी उठाई है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मैं बस थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा था, वैसे ही अब मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर प्रेम है, इसलिए उसके जैसा बनने के लिए व्यक्ति को भी प्रेम करना चाहिए। टिप्पणी समाप्त करें। मैं जहां जा रहा हूं आप अभी अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन आप बाद में अनुसरण करेंगे। मैं जहां जा रहा हूं वहां का रास्ता तुम्हें मालूम है। थॉमस ने उससे कहा, भगवान, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम रास्ता कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। यदि तुम सचमुच मुझे जानते हो तो तुम मेरे पिता को भी जानते होगे। अब से तुम उसे जानते हो और उसे देखा है। फिलिप ने कहा, हे प्रभु, हमें पिता दिखाओ और वह हमारे लिए काफी होगा। यीशु ने उत्तर दिया, हे फिलिप्पुस, क्या तुम मुझे नहीं जानते, यद्यपि मैं तुम्हारे बीच इतने समय से हूं? जिस किसी ने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम कैसे कह सकते हो, हमें पिता दिखाओ? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वे सिर्फ मेरे अपने नहीं हैं, बल्कि वह पिता है जो मुझ में रहकर अपना कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, या कम से कम स्वयं चमत्कारों के साक्ष्य पर विश्वास करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह वही करेगा जो मैं करता आया हूं। वह इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र पिता की महिमा करे। आप मुझसे मेरे नाम पर कुछ भी मांग सकते हैं और मैं वह करूंगा। सत्य की आत्मा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं जो आज्ञा देता हूं उसका पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सलाहकार देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा। संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न ही उसे जानता है। परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत जल्द दुनिया मुझे नहीं देख पाएगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं, और तुम मुझ में हो, और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह सब मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए ही कहा है। परंतु परामर्शदाता पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। मैं अब तुमसे अधिक बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि इस जगत का राजकुमार आ रहा है। मुझ पर उसकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन दुनिया को यह सीखना चाहिए कि मैं पिता से प्यार करता हूं और मैं वही करता हूं जो मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है। मेरे पिता माली हैं। वह मेरी हर उस शाखा को काट देता है जिस पर फल नहीं लगता। मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। कोई भी शाखा अपने आप फल नहीं ला सकती, इसे बेल में ही रहना चाहिए। जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, तब तक तुम फल नहीं ला सकते। यदि कोई मुझ में बना नहीं रहता, तो वह फेंकी हुई डाली के समान है जो फेंक दी जाती है और सूख जाती है। ऐसी शाखाओं को उठाकर आग में फेंक दिया जाता है और जला दिया जाता है। संकलक की टिप्पणी, जिस किसी को भी भगवान ने मसीह के चर्च में रखा है, वह उसमें नहीं रहने का विकल्प चुन सकता है, क्योंकि यदि आप प्रकाश में नहीं चलते हैं, तो मसीह का खून पापों को शुद्ध नहीं कर सकता है। परंतु लगातार प्रकाश में चलने से, जैसे वह प्रकाश में है, हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं, और यीशु उसके पुत्र का खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। टिप्पणी समाप्त करें। जब सलाहकार आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, तो वह मेरे विषय में गवाही देगा। और तुम्हें भी गवाही देनी होगी, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय आ रहा है जब जो कोई तुम्हें मारेगा वह सोचेगा कि वह भगवान की सेवा कर रहा है। अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा है। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुमसे कहेगा, जो अभी आना बाकी है, वह जो कुछ मेरा है, उसे लेकर तुम्हें यह बताएगा कि जो कुछ पिता का है, वह मेरा है। तुम्हें मालूम है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यीशु की प्रार्थना। यीशु ने यह कहने के बाद स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की, हे पिता, समय आ गया है। अपने पुत्र की महिमा करो, कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे। क्योंकि तूने उसे सब मनुष्यों पर अधिकार दिया, कि जिन सभों को तूने उसे दिया है, उन सभों को वह अनंत जीवन दे। अब अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ, परंतु ये बातें मैं जगत में रहते हुए कहता हूँ, कि वे मेरे आनंद का पूरा अंश अपने भीतर पालें। मैंने उनको तेरा वचन दिया है, और जगत ने उनसे बैर किया है, क्योंकि मैं जगत का हूँ, इससे अधिक वे जगत के नहीं। मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि आप उन्हें दुनिया से उठा लें, बल्कि यह है कि आप उन्हें उस दुष्ट से बचाएं। जैसे मैं भी इस संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, आपका वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उनको जगत में भेजा है। मेरी प्रार्थना केवल उनके लिए नहीं है। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अपने संदेश अन्य जातियों सहित के माध्यम से मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सभी एक हो जाएं, पिता, जैसे तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ, वे भी हम में रहें, जिससे जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जो महिमा तूने मुझे दी वह मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तुम मुझ में। उन्हें पूर्ण एकता में लाया जाए ताकि दुनिया को पता चले कि आपने मुझे भेजा है और आपने उनसे वैसे ही प्यार किया है जैसे आपने मुझसे प्यार किया है। टाइम आ गया है। जब उसने प्रार्थना पूरी कर ली तो यीशु अपने शिष्यों के साथ चला गया और किद्रोन घाटी को पार कर गया। यहूदा सैनिकों की एक टुकड़ी और मुख्य पुजारियों और फरीसियों के कुछ अधिकारियों का नेतृत्व करते हुए आया था। उनके पास मशालें, लालटेनें और हथियार थे। तब सिपाहियों की एक टोली ने अपने सेनापति और यहूदी हाकिमों समेत यीशु को गिरफ्तार कर लिया। वे उसे बांधकर पहले हन्ना के पास ले आए, जो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। कैफा ही वह व्यक्ति था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि यदि एक व्यक्ति लोगों के लिए मर जाए तो अच्छा होगा। तब यहूदी यीशु को कैफा के पास से रोमन गवर्नर के महल तक ले गए। पिलातुस ने उनके पास आकर पूछा, तुम इस मनुष्य पर क्या दोष लगाते हो? उसे पकड़ लो और अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। लेकिन हमें किसी को फांसी देने का कोई अधिकार नहीं है। पिलातुस फिर महल के अंदर गया, यीशु को बुलाया और उससे पूछा, क्या आप यहूदियों के राजा हैं? क्या यह आपका अपना विचार है, यीशु ने पूछा, या दूसरों ने आपसे मेरे बारे में बात की? क्या मैं यहूदी हूं? पिलातुस ने उत्तर दिया। तेरी प्रजा और महायाजकों ने ही तुझे मेरे हाथ सौंप दिया। यह तुमने क्या किया है? यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदियों द्वारा मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लड़ते, लेकिन अब मेरा राज्य दूसरी जगह है। तो फिर आप राजा हैं? पिलातुस ने कहा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं राजा हूं। वास्तव में इसी कारण से मेरा जन्म हुआ और इसीलिए मैं सत्य की गवाही देने के लिए जगत में आया हूं। सत्य के पक्ष में हर कोई मेरी बात सुनता है। पिलातुस फिर यहूदियों के पास गया और कहा, मुझे उसके खिलाफ आरोप का कोई आधार नहीं मिला। तेरी रीति है कि मैं फसह के समय तेरे लिए एक बंदी को छोड़ देता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? वे चिल्लाकर बोले, नहीं, वह नहीं, हमें बरअब्बा दो। पिलातुस ने यीशु को पकड़ लिया और उसे कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पर रख दिया। उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और बार बार उसके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा, नमस्कार, और उन्होंने उसके चेहरे पर मारा। फिर पिलातुस ने बाहर आकर यहूदियों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ कि तुम जान लो कि मैं उस पर दोष लगाने का कोई आधार नहीं पाता। महायाजकों और उनके हाकिमों ने उसे देखा और चिल्लाकर कहा, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, उसे मरना ही होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया था। जब पिलातुस ने यह सुना तो वह और भी डर गया और महल के भीतर लौट गया। आप कहां से आए हैं? उसने यीशु से पूछा, परंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आप मुझसे बात करने से इनकार करते हैं? पिलातुस ने कहा। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरे पास तुम्हें आज़ाद करने या सूली पर चढ़ाने की शक्ति है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें ऊपर से यह न दिया गया होता तो तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे तुम्हारे हाथ पकड़वाया वह बड़े पाप का दोषी है। तब से पिलातुस ने यीशु को छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु यहूदी चिल्लाते रहे, यदि तूने इस मनुष्य को जाने दिया तो तू सीजर का मित्र नहीं। जो कोई राजा होने का दावा करता है वह सीजर का विरोध करता है। अंत में पिलातुस ने उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उन्हें सौंप दिया और एक सूचना तैयार करवाकर क्रूस पर लगवा दी। इसमें लिखा था, नाजरेत के यीशु, यहूदियों के राजा। बाद में अरिमथिया के जोसेफ ने पीलातुस से यीशु का शव मांगा। अब यूसुफ यीशु का शिष्य था, परंतु गुप्त रूप से, क्योंकि वह यहूदियों से डरता था। पीलातुस की अनुमति से वह आया और शव को ले गया। उसके साथ निकुदेमुस भी था, जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था। निकुदेमुस लोहबान और एलोवेरा का मिश्रण लगभग 75 पाउंड लाया। उन दोनों ने यीशु का शव लेकर उसे मसालों के साथ सनी के कपड़े में लपेट दिया। यह यहूदी दफन रीति रिवाजों के अनुरूप था। जी उठना। सप्ताह के पहले दिन तड़के, जबकि अभी भी अंधेरा था, मरियम मगदलीनी कब्र पर गई और देखा कि प्रवेश द्वार से पत्थर हटा दिया गया है। वह दौड़ती हुई शमौन पतरस और यूहन्ना के पास आकर कहने लगी, उन्होंने प्रभु को कब्र से निकाल लिया है और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर चल पड़े। दोनों भाग रहे थे, परंतु दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकल गया और कब्र पर पहले पहुंच गया। उसने झुककर वहां पड़े हुए कपड़े की पट्टियों को देखा, परंतु भीतर न गया। तब शमौन पतरस, जो उसके पीछे था, आकर कब्र में गया। उसने वहां लिनन की पट्टियां पड़ी देखी और साथ ही दफनाने का कपड़ा भी देखा, जो यीशु के सिर के चारों ओर था। कपड़ा लिनेन से अलग अपने आप मुड़ा हुआ था। उन्होंने कब्र के अंदर जाकर देखा और विश्वास किया। सप्ताह के उस पहले दिन की संध्या को, जब चेले यहूदियों के भय के मारे द्वार बंद करके इकट्ठे थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो, तो वे क्षमा हो गए। यदि तुम उन्हें क्षमा नहीं करते, तो वे भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में और भी कई चमत्कार दिखाए, जो इस पुस्तक में दर्ज नहीं हैं। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके तुम उसके नाम से जीवन पाओ। सुबह सवेरे यीशु तिब्रियास झील के किनारे खड़ा था, परंतु चेलों को पता नहीं चला कि यह यीशु है। उसने उन्हें पुकार कर कहा, दोस्तों, क्या तुम्हारे पास मछली नहीं है? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। उसने कहा, अपना जाल नाव के दाहिनी ओर फेंको और तुम्हें कुछ मिल जाएगा। तब उस शिष्य ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह प्रभु है। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। आओ और नाश्ता करो। जब वे भोजन कर चुके, तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू सचमुच इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू सचमुच इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ भगवान, उसने कहा, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने फिर कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम रखता है? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। तीसरी बार उसने उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस को दुख हुआ, क्योंकि यीशु ने उससे तीसरी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तुम छोटे थे, तो अपने कपड़े पहनकर जहाँ चाहते थे वहाँ जाते थे, परंतु जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तब तू हाथ फैलाएगा और कोई तुझे वस्त्र पहनाएगा और जहाँ तू जाना न चाहे वहाँ ले जाएगा। यीशु ने यह बात यह बताने के लिए कही कि किस प्रकार की मृत्यु से पतरस परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। जॉन के मुख्य बिंदु। यीशु परमेश्वर थे और हैं। यीशु के माध्यम से सभी चीजें बनाई गईं। यीशु ही अनंत जीवन का एकमात्र मार्ग है। उनके चमत्कार इस बात का सबूत थे कि यीशु मानव शरीर में भगवान थे। परंपरा में डूबा हुआ एक बंद दिमाग जो कुछ भी देखता या सुनता है उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अनंत जीवन उन सभी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करते हैं, उदाहरण के लिए मसीह पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं के बारे में अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करें। जॉन अपने मंत्रालय की शुरुआत से ही यीशु के साथ था, इसलिए उनके द्वारा लिखी गई बातों का प्रत्यक्षदर्शी। जो कोई यीशु की आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझसे प्रेम रखता है।